फिर एक मजा की बात आ जाती, सुना तू?
लोगों को पता है कि बापू फूल पहनते नहीं है, पहना देते। अब देखा कि बापू जी इतने व्यस्त हैं, हमारे फूल हाल लेंगे नहीं तो सबने फूल इकट्ठे करके माला बना के मेरी गाड़ी को दुल्हन की नाई सजा दिया। जैसे दुल्हों की गाड़ी होती है ऐसी मेरी एम्बेसडर सज गई। अब सज गई तो मैं क्यों लड़ाई करूं, हटा दो हटा दो, ठीक है जो है बैठ गए। महाराज अहमदाबाद से क्रॉस करते हुए सिटी में जहाँ ट्रैफिक थोड़ा जाम हो रहा था तो गाड़ी स्लो हुई। गाड़ी स्लो हो गई तो 5 हिजड़ों को पता चला कोई दूल्हा जा रहा है। सजी दो जी गाड़ी, हाय हाय गाड़ी रुको, हाय हाय गाड़ी रुको। ओ महाराज वो घाघरे से यूं चौड़े करके यूं हिलावे, सड़क साफ हो रही है, गाड़ी रुको। मैंने गाड़ी रुकवाई, वो मेरे गाड़ी में तो पर्दे लगे थे, कांच के शीशे थे, पर्दा हटाया तो एक ने ओ ये तो बाबा है, तो दूसरा उधर था, अरे बोले यहाँ इतनी लंबी दाढ़ी वाला बाबा है, तो बाबा लोग है, हम तो दुल्हा समझे थे, गाड़ी जाने दो है, हाय। मैं ऐसा, मैंने कहा कि मैं दुल्हा के जीवन में तो एक बार शादी होती है, मेरी तो रोज शादियां होती है। अरे बाबा क्या रोज शादी? बोले हाँ हर रोज नई एक शादी है, शादी माना खुशी, चाद आबाद, हर चार तरफ आबादी है, हर रात नई एक शादी है, हर रोज मुबारकबाजी है। अभी अहमदाबाद आश्रम से मुबारक है और धन्यवाद लेकर चले, 4 घंटे में सूरत पहुंचेंगे, वहां फिर बराती तैयार होंगे। यहां से जाऊंगा तो फिर वहां फरीदाबाद में बराती तैयार होंगे। जय बापू कल भी थे तुम्हारे दुल्हा के जीवन में, तो जिंदगी में 150 दूल्हे बराती मिलते हैं और मेरे यहाँ तो महाराज रोज हजारों हजारों मिलते, कल भी कई जगहों पर मिले थे। हर रोज मुबारकबादी है, खुश नंदा है रंग गुल का, अच्छा विशाल जीवन, खुश शादी शाद मुरादी है, बन सूरज आप चमक रहा है, वो आत्मदेव सूरज चमक रहा है। हर रोज मुबारकबाजी है, हर रोज नई एक शादी है, अर्थात नई खुशी। सूरज तो बहुत पुराना है लेकिन हर रोज नया दिखता है, चंदा पुराना है लोग नया दिखता है। ऐसे आत्मा सनातन है, फिर भी हर रोज ध्यान करो, नवीन सुख नवीन शादी आबादी रहती है। आप भी ऐसी रोज नई शादी करो। नारायण हरि, नारायण हरि। तो हर रोज नई खुशी, नया आनंद, नया माधुर्य भगवत रस से आता है। नित रंग नए आजादी है, हर रंग रेश में हर मुंह में, अमृत भर भर भरपूर हुआ, सब कुलफत दूर दूर हुई, अर्थात ईश्वर से जुदाई दूर हुई। हर रोज नई एक शादी है, हर रोज मुबारकबाजी है। जब आशिक मस्त फकीर हुआ तो फिर क्या दिलगिरी बाबा, मैं क्या गाड़ी रोको, बोले जाने दो गाड़ी बाबा, हाय गाड़ी जाने दो। मैं क्या नहीं, तुम दुल्हा समझ के गाड़ी रोकी थी, दुल्हा को तो एक बार जीवन में ऐसा कुछ मुबारक मिलती है, हमको तो हर रोज। मैंने सेवक को बोला दे दे इनको दक्षिणा, मैं क्या मौज करो, दूल्हे के बाप हैं, दूल्हा की तो एक बार शादी, यहाँ तो रोज रोज शादी, हाय हाय। बोले बाबा बहुत अच्छे लगते हो, मैं क्या हाय हाय। मौज करे, वो भी याद करते होंगे कोई दूल्हा का बाप मिला था। जयराम जी बोलना पड़ेगा, काहे को घबराना, काहे को दुखिया, वो मिल गए तो उनके साथ आया। उपनिषद कहती है जिसको परमात्मा का ठोस पना ज्ञान पना समझ में आता है, बाले बालवताम, बालकों के साथ बालक जैसा, युवे युवा, युवानों के साथ जवान, वृद्धे वृद्धा, और माए मिल गई सासुए और दादियां तो बिल्कुल वो दादी माँ बन जाएगा। आश्चर्य त्रिभुवन जाए, जिसने उस आत्मदेव को जान लिया वो त्रिभुवन में कहीं भी जाए आश्चर्यकारक उसका जीवन। तो सच्चा जीवन तो तब शुरू होता है कि जब आप अपना वास्तविक ठोस स्वभाव, ठोस माधुरी है और अमर आत्म स्वभाव जान लेते हो। वो रोम रोम में रम रहा है। शिवजी ने कहा, उमा राम स्वभाव जे ही जाना, ताही भजन तजी भाव न आना। अपने उस रोम रोम में रमने वाले चैतन्य राम का स्वभाव जिसने जाना, वो उसका रस लिए बिना कहीं भी फंसता नहीं। न काम में फंसेगा, न क्रोध में फंसेगा, न जय जयकार में फंसेगा। सारी दुनिया जय जयकार करो, ज्ञानी को अहम नहीं होता। और सारी दुनिया विरोध में काले झंडे लेके खड़े हो जाओ, ज्ञानी को फिकर नहीं होती। बंबई से 80 किलोमीटर या 100 जो भी होगा, गणेशपुरी इलाका है, वहां मुक्तानंद बाबा का आश्रम है। वो मेरे दोस्त थे। कोई फोटो ले जाता मेरा, बाबा बोले ये तो मेरे दोस्त है आसाराम बापू, वो साइन कर देते मेरे फोटो पर। उनके भक्तों को भी मेरे प्रति आदर है। तो मुक्तानंद बाबा अभी शरीर छोड़ दिए, देश विदेश में उनके आश्रम में थे, बड़े मस्त रहते थे। उन्होंने लिखा कि शैवों को जैसे शिव ही कण कण में भासता है, वैष्णवों को जैसे विष्णु भगवान मई सृष्टि है, वेदांतियों को जैसे सृष्टि ब्रह्ममय, ऐसे मेरे लिए तो मेरे गुरुमय सृष्टि है, नित्यानंद स्वरूप है सारा। गुरु भक्ति उनमें बहुत थी। ऐसे मुक्तानंद बाबा के गुरु थे नित्यानंद, वो भी नित्य आनंद में रहते थे। उनकी तो श्वासोश्वास शादी होती थी, श्वासोश्वास खुशी। एक सिद्ध पुरुष पड़े रहते थे सड़क पर, उनको लोग नानाजी बोलते थे। नानाजी ने उस परमात्मा में विश्रांति पाई थी। ऐसे वे नानाजी थे, ठोस तत्व में मन उनका शांत हुआ था। लोग उनको देखते उनको अच्छा लगता था। बीच सड़क के पड़े रहते तो लोग गाड़ी घुमा के ले जाते थे, कभी हॉर्न नहीं बजाते थे। यहां तक कि ऑटो वाले, टांगे वाले, गाड़ियों वाले देखते थे कि ये नाना जी का इलाका है, गाड़ी नियंत्रित है। कभी सड़क के किनारे पड़े रहे, कभी बीच सड़क पड़े रहे, टांग पे टांग चढ़ा के बैठे रहे। नाना जी मुक्तानंद आश्रम के रास्ते पर एक कलेक्टर साहब को वहां से जाना हुआ तो ड्राइवर ने गाड़ी स्लो कर दी। बोले क्या बात है, बीच में क्यों पड़ा है? बोले नाना जी है। बोले नाना जी का क्या मतलब? बोले सच्चे मस्त फकीर है। कलेक्टर को अपनी हेकड़ी थी। कलेक्टर उतरा और वो नाना जी को कहा कि बुड्ढे सड़क के बीच टांग पे टांग चढ़ा के लेटा है, फुटहट वो पतले गरीब चित्रों में दिखने वाला महापुरुष बुढ़ा दिखता था, वो उठा खड़ा हुआ और कलेक्टर के सामने देखा। कलेक्टर सोचे इतने में तो धड़ाक से एक तमाचा रख दिया कलेक्टर को। कलेक्टर को तमाचा रख दिया नाना जी ने। महाराज कलेक्टर अब उस पर एक्शन क्या ले, जिंदगी बदल गई। गाड़ी वापस लौटाई और रिजाइन कर दिया और वो कलेक्टर भी सतपुरुष महापुरुष बन गया। कैसा है संकल्प ठोस उस महापुरुष में, जितना भगवान में विश्रांति पाते हैं। ऐसे सिंध में एक संत थे, ऐसे हिमाचल में एक दर्जी बाबा थे। दर्जी बाबा का नाम सुना होगा। तो एक संत गए उधर, किसी से पूछा कि इस तीर्थ में कोई साधु संत रहते हैं? निर्मल स्वामी से किस निर्मल स्वामी ने पूछा। बोले यहां दर्जी बाबा है। बोले दर्जी बाबा? बोले दर्जी का काम करते, मशीन चलाते, कपड़े बहुत बढ़िया सीते, कम पैसे लेते हैं, लेकिन उनको हम सब बाबा बाबा बोलते, बहुत अच्छे पुरुष हैं। तो निर्मल स्वामी उनके दर्शन करने गए। निर्मल स्वामी भी पंजाब में प्रसिद्ध संत हो गए, उनके कई पुस्तकें भी हैं, आश्रम भी है। तो दर्जी बाबा का दर्शन करने गए वो संत। दर्जी बाबा को कहा कि बाबा तुम तो दिन भर कपड़े सीते हो, कैसे बाबा बने? कब साधना करते हो, कब ध्यान करते हो? बोले महाराज जी मैं सीखा हूं कि सावधानी साधना है। ये मैं मशीन चलाता हूं ना तब भी सावधान रहता हूं, कपड़ा सीता हूं तो सावधान रहता हूं। लापरवाह लोग तो मंदिर में भी मुसीबत हो जाते हैं, और सावधान आदमी जहां भी जाता है साधन बन जाता है। मैं मशीन सीता, मशीन चलाता हूं, कपड़े सीता हूं, ग्राहक से बात करता हूं, लेकिन सावधान रहता हूं कि ये शरीर कर रहा है, मन कर रहा है, इंद्रियां कर रही है, मेरा ठोस तत्व सोहम स्वरूप ज्यो का त्यों है, तो मैं एक मिनट भी असावधान नहीं रहता हूं। जैसे ड्राइवर बातें भी करता है, हॉर्न भी बजाता है, क्लच और ब्रेक पर भी मूवमेंट करता है, और एक्सीलेटर और आदि पर भी और स्टीयरिंग पर भी, फिर भी ड्राइवर के अंदर में कोई गहरा चिंतन चलता है तो चलता है। गाड़ी चल रही है, बातें भी हो रही है, जहां बीच में गैप मिली तो गहरा चिंतन हो जाता है। ऐसे ही मैं परमात्मा चिंतन में सजाग रहता हूं, अपना काम बिगड़ने नहीं देता हूं। तो जो सावधान नहीं है वो मंदिर में भी मुसीबत है, चर्च में और मस्जिद में भी मुसीबत है, और जो सावधान है वो मंदिर में, चर्च में और आश्रम में और दुकान में, घर में ठीक। अर्थात सावधान रहना चाहिए, लापरवाह टट्टू नहीं होना चाहिए। वर्क वैल्यू, वर्क प्ले वैल्यू प्ले, दैट इज द वे टू बी हैप्पी एंड गे। जो काम करो तत्परता से करो, पूरा अपना मन लगाओ, पूरी अक्ल लगाओ। तुमने कितना बढ़िया काम किया उधर मत देखो, इससे बढ़िया हो सकता है कि नहीं। रोटी बनाने जरा सा जल गई, जरा सा क्या जल गई, जहर बना दिया रोटी को, काले काले दाग करके, पति को, बेटे को, खुद को, पेट की बीमारियां होगी, हाजमा कम होगा, एसिडिटी होगी, गैस होगा। रोटी बनाओ तो फिर में थोड़ा सा घुमाओ, पहले फुलका डालो तो हल्का सा सेके, फिर उसको गुलाट खिलाओ, थोड़ा ज्यादा सेके, फिर गुलाट खिलाओ, फूल जाए, बस। रोटी कैसे पकाना चाहिए वो भी अक्ल होनी चाहिए, बस डाल दिया रोटी और काले दाग कर दिए, तेज गैस जला दिया, और छौंक लगाते हुए सब्जी को इतना छौंक लगा दिया कि उसके विटामिन्स नाश कर दिया। क्या खा रहे? मैं तो करेले खा रही हूं। करेले क्या खा रही? घास खा रही। करेले के जो कड़वास है, छह रस है, खट्टा, खारा, तुरा आदि, पांच रस तो मिलते हैं, छठा रस तो कड़वा, कहीं कहीं मुश्किल से करेले से मिलता है, नीम से मिलता है। कड़वे रस की तो बहुत जरूरत है शरीर में, नमक खाएगी, खटास खाएगी जिससे लिवर खराब हो जाए, मिठास खाए जिससे डायबिटीज हो जाए। कड़वे करेले कड़वे लगते हैं, छिलटे उतार दिए, फिर नमक डाल के रख दिया, और नीचो के फिर कड़वे वो कड़वास निकाल दी, फिर करेले की सब्जी बनी। क्या खा रहे? करेले खा रहे, घास खा रहे। अरे छिलटे उतारे बिना करेले बनाने चाहिए, नमक में थोड़ी देर डाल के उनकी कड़वास मिटाओ मत। करेले की कड़वास, हफ्ते में एक दिन करेला खाना ही चाहिए, हफ्ते में एक दिन साटे की सब्जी खानी चाहिए। सब्जी लेते नहीं तो किसान भी कुदरती देन साटे की सब्जी को उखाड़ उखाड़ के फेंक रहे। किसान भी गलती करते और हम लोग भी गलती करते। साटे की सब्जी किडनी को नवीन जिंदगी देती है, किसान उखाड़ के फेंके नहीं। जैसे पालक की सब्जी बनती है ऐसी साटे की बनती, उसको साटोड़ी भी बोलते हैं, संस्कृत में पुनर्नवा भी बोलते हैं। और किडनी के लिए और पेशाब की तकलीफों के लिए सब्जी हफ्ता में 15 दिन में एक बार जरूर खानी चाहिए, जिससे किडनी बढ़िया रहे, किडनी संबंधी तकलीफें दूर रहे। और किसकी किडनी खराब हो गई हो तो भुट्टे ने, मकाई के भुट्टे, उन पर जो बाल होते हैं 50 ग्राम बाल मसल के 2 लीटर पानी में उबालो, 1 लीटर पानी बन जाए, फिर ठंडा हो जाए, छान के उसको पिलाओ तो किडनी की तकलीफें ठीक हो जाएगी। किसी की किडनी लेके डाल दिया, फिर वो भी बेचारा मरे, ये भी मरे, ऐसा काय को करना। किडनी ठीक रखने की तरकीब है, भुट्टे के बाल 50 ग्राम 2 लीटर पानी में उबाल के 1 लीटर कर दो, फिर छान के पिलाओ कुछ दिन के लिए।